الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اچھا، تو اب ہماری جو تفسیر میں بات چل رہی تھی وہ بطور مومن ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ٹاپک ہے، کیونکہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہم مومن کیوں ہیں؟ ایمان کی وجہ سے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، چاہے ہمارا نام مسلمانوں والا ہو، عبداللہ نام ہو یا امت اللہ نام ہو، اللہ کی بندی، رائٹ، امت اللہ نام ہو یا عبداللہ نام ہو، چاہے ہمارے والدین جو ہے وہ اللہ کے ولی ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ہم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے ہوں، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں فائدہ نہیں دیں گی اگر ایمان نہ رہا. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ایمان ہے کیا. تو ڈسکشن چل رہی ہے ایمان کے بارے میں، تو کچھ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کا اصل مدار قلبی تصدیق پر ہے. اس کے بغیر محض زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا صحیح نہیں ہے. تو زبان سے کوئی کتنا ہی کہتا رہے کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن اگر اس نے دل سے تصدیق نہیں کری ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اب ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کہا نا، ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم لوگ جو ہے یہ اپنے آپ کو نہ کہو کہ تم ایمان لا چکے ہو. قل لم تؤمنوا، کہ تم ایمان لا چکے ہو یہ مت کہو، بلکہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو یا تم اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہو. تو اس کا سیاق و سباق کیا تھا کہ کچھ عربی یعنی دیہاتی لوگ، بدو جن کو ہم کہتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں آئے تھے اور انہوں نے زبان سے اس طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا کہ وہ در حقیقت ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں. البتہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا اس طرح سے کہ لڑائی اور مخالفت چھوڑ دی تھی اور آ کر کے ظاہری طور پر اطاعت اختیار کر لی تھی، ظاہری اطاعت اختیار کر لی تھی، اور کچھ اعمال کرنے شروع ہو گئے تھے. تو لیکن چونکہ ان کو ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے ان کے باقی معاملات جو تھے وہ ابھی بھی خراب ہی چل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر کہا کہ بھئی تم زبانی دعوے نہ کرو، بلکہ اور دوسری بات کیا تھی کہ تم زبانی دعوے نہ کرو، تم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ پہنچانے کی کوشش نہ کرو، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اور تیسری بات یہ تھی کہ تم احسان مت جتلاؤ. अपने ईमान लाने का जो तुम एहसान जतला रहे हो ये मत जतलाओ, क्योंकि तुम्हारा ईमान लाना जो है वो तुम्हारे ही फायदे की चीज है। तुम अल्लाह और उसके रसूल को क्या फायदा पहुंचाओगे? तो इस वजह से जो आखिरी बात थी वो ये कि असलमना का यहाँ पर लफ्जी मानी मुराद है, ठीक है, क्योंकि लफ्जी मानी मुराद का ये होता है कि जाहिरी अफाल में अतात करना, ये असलमना का लफ्जी मानी होता है। तो ये तो इनको हासिल था क्योंकि इन्होंने कुछ जाहिरी मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इख्तियार कर ली थी, तो इस वजह से अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि कुलू असलमना। तो इसके ऊपर फिर एक इल्मी डिस्कशन है कि क्या इस्लाम और ईमान अलग अलग चीज़ हैं, कि यहाँ पर अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं कि तुम ईमान लाए हो ये मत कहो, बल्कि ये कहो कि तुम मुसलमान हो गए हो। तो इसको पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर मजीद डिस्कशंस करनी है, बहुत अहम डिस्कशंस हैं वो। तो यहाँ फरमाते हैं मारफुल कुरान में जल्द 8 के अंदर 129 पेज के ऊपर कि ऊपर की तकरीर से मालूम हो गया कि इस आयत में इस्लाम के लुहवी मानी मुराद हैं। लुहवी मीनिंग जो लफ्जी मानी कहते हैं हम इसको, और लिटरल मीनिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में, इस्तिलाही मानी मुराद नहीं है, यानी दीन इस्लाम की इस्तिलाह में, इस्तिलाह को हम इंग्लिश में कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी, ठीक है, दीन इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में, या दीन इस्लाम का जो मुहावरा है, बोलचाल का एक स्टाइल होता है, ठीक है, तो उस बोलचाल के स्टाइल के अंदर जो दीन इस्लाम से रिलेटेड होता है ना, तो उसमें जो टर्म्स डिफाइंड हैं उन टर्म्स के एतबार से अगर हम लफ्ज़ इस्लाम को देखें तो यहाँ पर वो मानी मुराद नहीं है, ठीक है, सिर्फ लफ्जी मानी मुराद है। इसलिए इस आयत से इस्लाम और ईमान में इस्तिलाही फर्क पर कोई इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता, यानी इस आयत से हमें ऐसी कोई दलील प्रूफ वगैरह नहीं मिलता कि इस्लाम और ईमान जो है ना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि इस्तलाही तौर पर ये दोनों एक ही चीज है। और फरमाते हैं कि इस्तलाही ईमान और इस्तलाही इस्लाम अगरचे मफहूम और मानी के एतबार से अलग अलग हैं, ठीक है, यानी उनका लफ्जी तर्जुमा देखा जाए तो वो अलग अलग हैं, और उनकी जो जो मफहूम है यानी उनको अगर हम एक्सप्लेन करें कुछ अंदाजों से तो हमें अलग अलग ही लगते हैं, लेकिन इस्तलाही शरा के अंदर ये दोनों फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो क्या किस तरह से ये मफहूम और मानी के एतबार से अलग अलग हैं कि ईमान इस्तलाही शरा में तस्दीक कल्बी का नाम है, यानी अपने दिल से अल्लाह ताला की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सच्चा मानना, ठीक है, तो शरी इस्तिलाह में ईमान का मफहूम ये है, ठीक है, ईमान का मफहूम ये है कि अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सच्चा मानना, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ दो लिखे हैं लेकिन इसके अलावा जो पांच चीजें हैं कि किताबों पर ईमान लाना, सारे रसूलों पर ईमान लाना और फरिश्तों पर ईमान लाना, आमंतु बिल्लाही व मलाइकती ही व कुतुबी ही व रुसुली ही वल यौमिल आखिरी और कयामत के दिन पर ईमान लाना, वल कद्र खैरी ही व शर्री ही मिनल्लाह ताला और इस बात पर ईमान लाना कि खैर और शर सब का सब अल्लाह ताला की तरफ से है, मिनल्लाह ताला, ठीक है, ये छठी चीज है। और वल बासे बादल मौत, सातवीं चीज क्या है कि मौत के बाद दोबारा खड़े किया जाना, जिंदा किया जाना, तो ये सात चीजें, इनकी दिल से तस्दीक करना इसको ईमान कहते हैं। और इस्लाम क्या है? इस्लाम नाम है आमाले जाहिरा में अल्लाह ताला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने का, ठीक है, यानी मफहूम के अतबार से इस्लाम जो है वो आमाले जाहिरा में अताअत करने का नाम है, लेकिन शरीयत में तस्दीक कल्बी उस वक्त तक काबिले एतबार नहीं है, यानी उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दिल की तस्दीक को जब तक इसका असर जवारह के आमाल और अफआल तक ना पहुंच जाए। जवारह का मतलब क्या होता है? जो हमारे आज़ा होते हैं, हाथ पैर, ठीक है, आंखें और कान और जुबान, जिसका अदना दर्जा ये है कि जुबान से कलमा इस्लाम का इकरार करें, ठीक है, तो जवारे के अंदर चूंकि जुबान भी शामिल है तो जुबान से इकरार करना ये आमाल और अफआल का, इस्लामी आमाल और अफआल का सबसे कम दर्जा है, यानी इससे कम कोई दर्जा नहीं है कि जुबान से भी इकरार अगर कोई शख्स ना करे तो उसको मुसलमान नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कम से कम उसको जुबान से इकरार करना चाहिए। अब उसके बाद नमाजें पढ़े, रोजे रखे, जकात दे, ये सब ऊपर की चीजें हैं। ठीक है, यानी जुबान के इकरार के बाद इनकी बारी आती है। तो कम से कम दर्जा, यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ इस्लाम इज कि जुबान से इकरार करे। इसी तरह इस्लाम अगरचे आमाले जाहिरा का नाम है, लेकिन शरीयत में वो उस वक्त तक मोतबर नहीं जब तक के दिल में तस्दीक ना आ जाए। ठीक है, कोई शख्स मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त आना शुरू कर दे और नमाज पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है, ये जो गोरे हैं अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ये बड़े सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, अगर ये अपने आप को किसी चीज के ऊपर आमादा कर लेना कि हमने ये काम करना है, अब वो करके दिखाएंगे इस बात को। ठीक है, हम जब, क्योंकि आपको पता है हम अमेरिका के अंदर है इस वक्त, तो हम फजर की नमाज के लिए निकलते हैं ना, तो हम तो फजर की नमाज के लिए जाहिर है थोड़ा देर से निकलते हैं क्योंकि हमें जमात पकड़नी होती है, तो गाड़ी में बैठते हैं, फिर गाड़ी से बैठ करके फिर जब सड़क पर आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि इनमें से अक्स बहुत सारे जो गोरे होते हैं वो उस वक्त, यानी जब अभी रोशनी शुरू ही नहीं होती है, उस वक्त जो है ये ऑलरेडी सड़क के ऊपर जॉगिंग कर रहे होते हैं, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, हत्ता के दुकानों के अंदर, ये जो स्ट्रिप मॉल्स वगैरह होते हैं वहां पर एक्सरसाइजेस की मशीन्स की दुकान है, तो वो दुकानें खुली भी होती हैं और उन दुकानों के अंदर ये एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर इनमें से किसी के दिमाग में बात आ जाए कि मुझे एक मुसलमानों की मस्जिद में जाकर के जो है वो ये अफाल करने चाहिए सुबह सुबह, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम फजर की नमाज पढ़ के जब वापस आ रहे होते हैं तो ये उस वक्त दफ्तर जा रहे होते हैं। ठीक है, और शाम को जो है ये जल्दी खाना वाना खा करके सो जाते हैं, तो इनके लिए सुबह को उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर दिल से तस्दीक नहीं करी तो ये मुसलमान नहीं कहला सकते, चाहे अमाल कितने करने शुरू कर दें। ठीक है, तो उसको कहेंगे कि जब तक दिल में तस्दीक ना आ जाए, वरना वो निफाक है, क्योंकि ये अगर इस तरह के अमाल कर रहा है और जुबान से कह भी रहा है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन दिल से तस्दीक नहीं करी, तो वो हिपोक्रेट कहलाएगा, जिसको उर्दू में मुनाफिक कहते हैं। इस तरह इस्लाम और ईमान मबदा और मुंतहा के एतबार से तो अलग अलग हैं। मबदा का मतलब होता है बिगिनिंग, इब्तिदा के एतबार से, और मुंतहा का मतलब एंड, यानी इंतहा के एतबार से अगर देखा जाए। तो ईमान और इस्लाम और ईमान मबदा और मुंतहा के एतबार से तो अलग अलग हैं। ये ईमान बातिन और कल्ब से शुरू होता है। ठीक है, ईमान बातिन और कल्ब से शुरू होकर जाहिर आमाल तक पहुंचता है, जाहिर आमाल तक पहुंचता है, और इस्लाम अफआले जाहिरा से शुरू होकर बातिन की तस्दीक तक पहुंचता है। ठीक है, जाहिर से शुरू होता है फिर बातिन की तस्दीक तक पहुंचता है, मगर मिसदाक के एतबार से इन दोनों में तलाजुम है। क्या मतलब? कि ईमान की जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो इंसान का दिल होता है। दिल से ईमान वो लेकर आता है कि भाई दिल से जो है वो तैयार हो जाता है कि हाँ मैं मुसलमान होता हूं। ठीक है, और फिर उसको कुछ टाइम लगता है जाहिरी आमाल पर आने में, लेकिन शुरू में वो दिल से तस्दीक कर चुका होता है। फिर उसके बाद आमाल पर पाबंदी अख्तियार करने में उसको कुछ टाइम लगता है, तो इवेंचुअली यानी बिल आखिर वो आमाल भी करना शुरू कर देता है, लेकिन ईमान उसके दिल में पहले आ चुका होता है। ठीक है, उसी तरह इस्लाम को अगर देखा जाए तो इस्लाम जो है वो इंसान के जाहिरी यानी जाहिर से शुरू होता है, लेकिन जाहिर का असर जो है वो बातिन पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई शख्स जाहिरी तौर पर दिल में इरादा करे, खाली ये इरादा करे कि भाई मैं जाहिरी तौर पर आमाल तो शुरू कर दूं, ठीक है, कुछ अरसा मैं करता रहूंगा, तो करते करते हो सकता है कि मेरे दिल पर भी असर पड़ जाए। ठीक है, और मेरा दिल भी जो है ना वो इस बात की गवाही दे उठे कि हाँ यही सही तरीका है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए फ्यूचर के अंदर जा करके। तो ऐसा शख्स जब तक दिल से गवाही नहीं देगा उस वक्त तक तो मोमिन नहीं होगा, ठीक है, उस वक्त तक तो मोमिन नहीं होगा, लेकिन जब वो यानी उसने जाहिरी अमाल तो करने शुरू कर दिया ना, यानी मुसलमान तो वो पहले यानी सुपुर्दगी उसने पहले कर दी, अतात उसने पहले शुरू कर दी, लेकिन तस्दीक उसने बाद में करी। तो बस ये मुबदा यानी मबदा और मुंतहा का ही डिफरेंस है, ठीक है, कि इस्लाम जो है वो जाहिर से शुरू होता है और फिर बातिन में पहुंचता है, और ईमान जो है वो बातिन से शुरू होता है और फिर उसका असर जाहिर के ऊपर आता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, ठीक है, यानी एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता और दूसरा पहले के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि ईमान इस्लाम के बगैर मोतबर नहीं है और इस्लाम ईमान के बगैर शरण मोतबर नहीं है। मोतबर का मतलब ये है कि बस उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शरीयत में ये नहीं हो सकता कि एक शख्स मुस्लिम तो हो मोमिन ना हो, ठीक है, कि भाई वो यानी उसको हम इस मुसलमान तो तस्लीम कर लेते हैं लेकिन अभी ये मोमिन हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, या ये कि वो मोमिन हो और मुस्लिम ना हो, ठीक है, मगर ये कलाम इस्तिलाही ईमान और इस्लाम में है, यानी ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये लफ्जी एतबार से डिस्कशन कर ही नहीं रहे, बल्कि ये हम डिस्कशन सारी इस्तिलाही एतबार से कर रहे हैं कि शरीयत के इस्तिलाह के अंदर इस तरह से होता है, कि मफहूम के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम है, एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता और दूसरा पहले के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लुगवी मानी के एतबार से हो सकता है कि एक शख्स मुस्लिम हो मोमिन ना हो, जैसे तमाम मुनाफिकीन का यही हाल था कि जाहिरी अताते अहकाम की बिना पर मुस्लिम कहलाते थे, ठीक है, जो मदीना मुनव्वरा के अंदर मुनाफिक थे अब्दुल्ला बिन उबई, ठीक है, ये मुनाफिकीन का सरदार था और इसके जितने भी फॉलोअर्स थे, तो इनका यही हाल था ना कि जाहिरी अताते अहकाम की बिना पर ही मुसलमान कहलाते थे, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने बता दिया था लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान नहीं कर दिया था कि ये भी काफिर है, ये भी काफिर है, ये भी काफिर है, सिर्फ झूठ बोल रहा है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, आपने उसने ऐलान तो नहीं किया था ना, सिर्फ हजरत हुजैफा रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया था कि भाई ये लोग जो हैं वो मुनाफिक हैं, और किसी को नहीं बताया था। नबी अलैहिस्सलाम के फिर कुछ अमलों से पता लगता था कि भाई फलाना शख्स जो है वो मुनाफिक है, या कुछ करीबी सहाबा को अंदाजा हो जाता था कि ये शख्स जो है ना ये मुनाफिक ही हो सकता है, ये मुसलमान ही हो सकता, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता होता था, ठीक है, तो ये लोग जाहिरी अताते अहकाम की बिना पर मुस्लिम कहलाते थे मगर दिल में ईमान ना होने के सबब मोमिन नहीं थे। वल्लाहु सुभानहु तआला आलम। ठीक है, इस पैराग्राफ के बारे में अगर किसी को कोई सवाल हो जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, सिर्फ इसके बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे की जो डिस्कशन है वो करनी थी इससे रिलेटेड डिस्कशंस। अच्छा, चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हमने आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा है ना, तो ये इसमें से थोड़ा कुछ पढ़ना है, यानी सारी चीज़ें तो आपके सामने हम नहीं पढ़ सकते बिकॉज अच्छा खासा ये तफसीली बयान है, और इसको समझाना जो है वो उसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए होगा और हर एक जो है वो उस लेवल पर भी नहीं है कि सारी बात उसको समझ सके, तो इस वजह से इसकी तफसील तो इंशाल्लाह हम किसी और क्लास में जो इस ग्रेड में हैं, इस लेवल में हैं, तो उनको अलग से इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के सामने इनमें से चंद चीज़ें खाली डिस्कस करनी है। ये है क्या डॉक्यूमेंट? हदीस मुबारका की एक बड़ी किताब है मिशकातुल मसाबी। मिशकातुल मसाबी में जो उसके मुअल्लिफ हैं उन्होंने सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिजी, ये जो हदीस की सही किताबें हैं ना, इनमें से उन्होंने सेलेक्टेड हदीसें जमा करी हैं मिशकातुल मसाबी के अंदर, ठीक है, तो मिशकातुल मसाबी की एक मौलाना साहब ने तशरीह लिखी जिसका नाम है तौजीहात, कई जिल्दें हैं उसकी, तो ये तौजीहात की जिल्द अव्वल में से किताबुल ईमान के सफ़े हैं, ठीक है, तो यानी बिल्कुल शुरू में जहाँ पे कि उन्होंने ईमान से मुतालिक हदीसें नकल नकल करी है ना, उन हदीसों की ये तशरीह में इन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं, किताबुल ईमान, ईमान के अबवाब। ठीक है, तो इसमें से पहले हम आपके सामने थोड़ा सा ईमान की लुगवी तारीफ में से भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये दूसरे पेज पर है, आपको जो पीडीएफ फाइल भेजी है इसका दूसरा पेज। ईमान के बारे में कहते हैं कि ईमान अमन से माखूज है, जो जिद्द खौफ है। ठीक है, यानी ईमान का लफ्ज अमन से निकला और अमन खौफ की जिद है, ऑपोजिट है खौफ का। अमना या अमीनू समिया अमीना या अमनु समिया यस्माउ से लाजमी मानी में मुस्तमल होता है, यानी बेखौफ होना। तो ईमान का मतलब होगा बेखौफ होना। किससे बेखौफ होना? अल्लाह ताला से बेखौफ होना, जहन्नुम की आग से बेखौफ होना, ये ईमान कहलाता है। ईमान का लघवी मानी है ये। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ईमान की शरी इस्तिलाही तारीफात में थोड़ा सा देखते हैं, जो इसके नीचे ही है बिल्कुल, कि ईमान की इस्तिलाही तारीफात अल्फाज के इख्तलाफात के साथ कुल 6 हैं, अगरचे मफहूम और मर्जा सबका एक ही है। यानी इस्तिलाही तौर पर ईमान की तारीफात जो है ना, वो उलमा ने कुल 6 अंदाज में लिखी है। ठीक है, मफहूम सबका एक ही है, ताहम कुछ फवायद तअद्दुद तारीफात में हैं, यानी कुछ फायदे भी हैं। अगर आप इन पूरे 6 के 6 तारीफात को पढ़ लें, तो इस वजह से इन्होंने 6 की 6 तारीफात यहाँ पर नकल कर दी हैं, अगरचे कह रहे हैं कि एक भी काफी है इनमें। ठीक है, कोई एक तारीफ भी अगर आप पढ़ लें ना, तो वो भी काफी है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप सारी तारीफात को पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। तो वो तो फिर आप अपने टाइम पे बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी जो है वो मुझे इसमें से सिर्फ एक ही डिस्कस करनी है, क्योंकि इसके बाद हमने दरअसल असल टॉपिक पर आना है। तो इसमें से जो एक हमने पढ़नी है ना, वो इस पेज के सबसे आखिर में है, यानी तीसरे पेज, पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 के आखिर में अल्लामा शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने जो ईमान की तारीफ करी है, वो ये क्या है? तस्दीक नबी बिमा जा बिहन नबी बिल एतमाद अल नबी। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली हाँ ठीक है, ये इसकी इसका तर्जुमा कर लेते हैं कि हज़रत अलामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ईमान क्या है, कि नबी अलैहिस्सलाम जो चीज़ें लेकर के आए उनकी तस्दीक करना, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद करते हुए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर एतमाद करते हुए उन सब बातों की तस्दीक करना कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी जो उन्होंने हमें बताई। तो लिखते हैं कि इस तारीफ से ये फायदा हासिल हुआ कि जो लोग अकल के जोर और अकली दलाइल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी वो पहले मुसलमान नहीं थे, ठीक है, लेकिन अकली दलाइल कुछ उन्होंने कुरान पढ़ करके उनको कुछ अकली दलाइल मिल गए, या हदीस सुन करके उनको कुछ अकली दलाइल मिल गए, तो उसकी बुनियाद पर कहते हैं कि हाँ, ये दलाइल जो है ना, ये हमें समझ में आते हैं, तो इस वजह से ना हम मुसलमान हैं। ठीक है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकते, अकली दलाइल की बुनियाद पर वो मुसलमान नहीं हो सकते। ठीक है, मुसलमान उस वक्त होंगे कि जब वो नबी अलैहिस्सलाम की बातों के ऊपर यानी एतमाद करेंगे और कहेंगे कि हाँ, हम मुसलमान हो गए। ठीक है, अलबत्ता अगर कोई पहले से मुसलमान है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर एतमाद करता है, दलाइल नहीं है उसके पास, लेकिन वो एतमाद करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा शख्स जो है ना, वो अगर नबी अलैहिस्सलाम की बातों को अकल की बुनियाद पर भी तस्लीम करे, ठीक है, कि हाँ वाकई ये अल्लाह ताला की आयात हैं और इसके अंदर ये निशानियां हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, तो कुरान के अंदर साइंटिफिक मिरेकल्स वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं, और बहुत सारी इसके अलावा ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि अकल को समझ में आती हैं। ठीक है, तो उनका इकरार करना ये ईमान के मुनाफी नहीं है, बल्कि इससे जो है वो ईमान मजीद मजबूत होता है। ठीक है, पहले से इकरार किया हुआ है, फिर अकली दलाइल से जो है वो खुश हो रहे हैं कि हाँ देखो वाकई हमारे कुरान के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, कितनी सच्ची बात है। तो ये हमारे ईमान की खिलाफ वर्जी नहीं करता ये बात, ठीक है। तो इससे जो है ना खाली आपका ईमान मजीद मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो इस ये यहां पर ये नहीं कह रहे, यहां पर ये कह रहे हैं कि कोई शख्स काफिर है और वो सिर्फ अकली दलाइल की बुनियाद पर जो है ना वो मुसलमान होता है, वरना उसको एतमाद नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो मुसलमान नहीं कहलाएगा, क्यों? इसलिए कि अकली दलाइल की बुनियाद पर वो सिर्फ उन्हीं बात का इकरार करेगा, उन्हीं बातों का इकरार करेगा जो कि उसकी अकल को समझ में आ रही है, ठीक है, जिनके ऊपर उसकी अकल कन्विंस्ड है। तो जिन पर कन्विंस्ड है उन बातों का तो उसने इकरार कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी फिर उसको मिल सकती हैं कि जिनके ऊपर उसकी अकल मुतमईन नहीं हो रही है, ठीक है। तो जिन पर उसकी अकल मुतमईन नहीं हो रही तो अब उन बातों को वो क्यों मानेगा, हालांकि वो तो अकल की बुनियाद पर खाली बातों को मानता है, तो एतमाद तो उसको है ही नहीं। तो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा शख्स जो है ना वो पार्शली इकरार कर रहा है, पार्शली जुजी तौर पर इकरार कर रहा है, सिर्फ उन बातों का इकरार कर रहा है जो उसकी अकल को समझ में आ रही है, ठीक है। तो बाकी चीजों का तो ये इनकार करेगा, दिल के अंदर तो इसको इत्मीनान नहीं होगा ना बाकी चीजों के ऊपर, जैसे कि तकदीर का मामला, ठीक है। तकदीर का मामला एक ऐसा मामला है जो कि समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो कोई शख्स कहे कि नहीं मैं तो नहीं मानता इस तकदीर को, तकदीर वकदीर कोई चीज नहीं है और ये सब जो है ना वो बनाई हुई बातें हैं, मैं जो हूं वो बाकी बातों को मानता हूं, तकदीर को नहीं मानता, क्योंकि बाकी बातें मेरी अकल में समझ में आती हैं और तकदीर मेरे अकल में नहीं आती। ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता, ठीक है, ना मोमिन हो सकता है और ना ही वैसा शख्स मुसलमान कहला सकता है, ठीक है। तो ये एक सेटल सा फर्क है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। पहले से मोमिन होना और बाद में अकली दलायल की बुनियाद पर यकीन हासिल होना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अकली दलायल की बुनियाद पर कुछ बातों को मान लेना जो आपकी अकल में आ रही हैं और बाकी को नहीं मानना जो आपकी अकल में नहीं आ रही हैं, ये मोमिन नहीं होता, ठीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मिर्जा मजहर जाने जाना और काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ईमान की तारीफ में फरमाते हैं कि ईमान की एक जाहिरी सूरत है और एक उसकी हकीकत और बातनी सूरत है। जाहिरी सूरत तो यह है कि तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान, इकरार इकरार बिल लिसान, ठीक है, कि जुबान से, जनान जो है वो जुबान को कहते हैं, सॉरी नहीं बल्कि वो तो लिसान को कहते हैं, यानी दिल से तस्दीक करना और अरकान के ऊपर अमल करना और जुबान से इकरार करना, ठीक है, ये ईमान की जाहिरी सूरत है, ठीक है। अच्छा, और हकीकत ईमान ये है कि मुक्तज़ाए तबा, मुक्तज़ाए शरा के ताबे हो जाए, ठीक है, यानी तबीयत जो इंसान की चाहती है ना वो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो जाए, जिसको हम बार बार समझाते हैं, मशाइख ने क्या लिखा उसको कि मकरूहाते शरईया मकरूहाते तबईया बन जाए, ठीक है, कि जो चीजें शरीयत के अंदर मकरूह हैं वो हमें अपनी तबीयत में भी मकरूह लगनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये हकीकत ईमान है, ठीक है, यानी जाहिरी सूरत ईमान की, ये कह रहे हैं ईमान की जाहिरी सूरत, ठीक है, इस्लाम की जाहिरी सूरत की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर ईमान की जाहिरी सूरत की बात हो रही है कि ईमान की जाहिरी सूरत जो है वो दिल से तस्दीक करना, ठीक है, और अरकान के ऊपर अमल करना और जुबान से इकरार करना, ये तीनों चीजें जो हैं वो ईमान की जाहिरी सूरत है, और हकीकत ईमान ये है कि तबीयत भी जो है ना वो इंसान की शरीयत के मुताबिक हो जाए, ठीक है। तो इससे जो है वो ज्यादा यानी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये दो अलग अलग बातें कर रहे हैं ना, तो पहली बात जो जाहिरी सूरत जिसको ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर जाहिरी सूरत से मुराद जो है वो सिर्फ आमाल नहीं है, बल्कि यहाँ जाहिरी सूरत के अंदर वो पूरा का पूरा ईमान, जो जिसको नस्से ईमान कहेंगे, नफ्से ईमान, ठीक है, ईमान का जो मिनिमम फॉर्म है ना वो बयान कर रहे हैं जाहिरी सूरत के तौर पर, ठीक है, कि भाई जो ये तीन काम करे, तस्दीकुम बिल जिनान, अमल बिल अरकान, इकरारुम बिल लिसान, तो ये शख्स मोमिन हो गया, ठीक है, मोमिन हो गया। लेकिन मोमिन कामिल कब बनेगा, आला दर्जे का मोमिन कब बनेगा, आला दर्जे का मोमिन उस वक्त बनेगा जब उसको हकीकत ईमान हासिल हो जाएगी। और हकीकत ईमान क्या है कि उसका तबीयत की जो तकाजे हैं वो शरीयत के तकाजे के मुताबिक हो जाए। ठीक है, तो बस ये एक डिफरेंट अंदाज में इन्होंने बात करी है कि ईमान यानी नफ्स ईमान और ईमान कामिल में फर्क इन्होंने बताया यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और मौलाना हजरत मजहर जान जान रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये जो तीनों बुजुर्ग है ना, ये तज़किया नफ्स के लाइन में इनका बहुत बड़ा नाम है। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये कादरी सिलसिले के, आपको पता है कि सबसे बड़े शेख कहलाते हैं, और हजरत मिर्ज़ा जान जान रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदिया सिलसिले के बहुत बड़े शेख कहलाते हैं। तो चूंकि इनका तो काम ही जो है वो ईमान के अंदर ज्यादा से ज्यादा बेहतरी पैदा करना था, तो इस वजह से उन्होंने इस अंदाज में डिफाइन किया है। अब इसके बाद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की ईमान की तारीफ भी पढ़ लेते हैं कि उन्होंने फरमाया, तस्दीकुन नबी बिमा जाआ बिही मअत तबर्रा अन जमी मा सिवाहु। तो अभी ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसको एक्चुअली स्किप कर देते हैं। इसके बाद जो उन्होंने ईमान की चंद अकसाम लिखी है ना, वो भी पढ़ लेते हैं कि ईमान मतबू। ईमान मतबू क्या होता है कि ये फरिश्तों का ईमान है, गोया ये मोहर शुदा ईमान है, इसमें कोई फर्क नहीं आ सकता और ना कोई तब्दीली आ सकती है, यानी फरिश्तों का भी को भी तो ईमान हासिल है ना, तो उस ईमान को ईमान मतबू कहते हैं। ठीक है, कि ये मोहर शुदा है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इसलिए कि फरिश्ते जो हैं वो उनको अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार दिया नहीं है कि वो कुफर भी कर सकें, ऐसा तो है ही नहीं, तो वो तो कुफर कर ही नहीं सकते, तो इस वजह से उनका ईमान जो है वो एक अलग किस्म का ईमान है, ईमान मतबू। ईमान मासूम ये दूसरे दर्जे का, ये दूसरे तरह का ईमान है, यानी ये ईमान जो है वो कुफर से महफूज है। ये ईमान अंबियाए कराम का ईमान होता है। ठीक है, इसलिए कि अंबियाए कराम जो हैं वो अगरचे फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, लेकिन अंबिया भी जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से महफूज होते हैं कुफर से। ठीक है, तो इनका ईमान जो है वो ईमान मासूम कहलाता है। फिर ईमान मकबूल यानी ऐसा ईमान जो कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होता है, ये आम मोमिनीन का ईमान होता है। ठीक है, जिसमें हम आप सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ईमान मकबूल कहलाता है जो कि मुसलमानों का ईमान होता है। ईमान मौकूफ, ठीक है, यानी डिपेंडेंट ईमान, अभी रुका हुआ है ये ईमान, अभी ईमान आया नहीं है बल्कि मौकूफ है किसी बात पर, तो ये ईमान किसका ईमान होता है, ये अहले जैग वा बुतलान वा अहले बिदत का ईमान है। ठीक है, यानी जो बातिल अकायद रखने वाले लोग होते हैं, जिनके दिलों के अंदर जैग कहते हैं जंग को, या रूहानी बीमारियां शदीद दर्जे की होती हैं, या बिदत पे अमल करते हैं, ठीक है, यानी अकीदे की बिदत में जो मुब्तला होते हैं, तो इन लोगों का जो ईमान होता है ना, ये ईमान मौकूफ कहलाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो बिदत से तौबा करें और ईमान की तरफ लौट आए। ठीक है, तो इनका ईमान ईमान मौकूफ कहलाता है क्योंकि इसके अंदर अकीदे की के लेवल पर बिदतें शामिल होती हैं, तो जब तक ये उससे तौबा नहीं करेंगे इस वक्त तक ये ईमान मकबूल में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, फिर उसके बाद ईमान मरदूद, ये मुनाफिकीन का ईमान होता है जो ना मकबूल व मरदूद है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जाहिरी ईमान होता है और बातनी ईमान इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद है कि इसको अल्लाह ताला बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो ईमान मौकूफ अलग चीज़ है, ईमान मरदूद अलग चीज़ है, ईमान मकबूल अलग चीज़ है। तो ये तो कुछ ईमान की तफसीलात थी, इनको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये हमें ऑलरेडी मालूम है ये सारी चीज़ें। ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है, कोई अगर यानी अकीदा उसका ख़राब है तो वो तौबा कर लेगा तो वो ईमान वाला बन जाएगा, ये हमें पहले से बात पता है। ठीक है, और ईमान मरदूद का भी हमें पहले से पता है कि ये जो मुनाफिक होते हैं तो इनका ईमान अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। ईमान मकबूल का भी हमें पता है, औलिया अल्लाह का ईमान किस दर्जे में है, औलिया अल्लाह का ईमान जो है वो ईमान मकबूल में आता है। ठीक है, इसलिए कि हर ईमान वाला, ठीक है, वो अल्लाह ताला का वली होता है। ठीक है, बस दर्जे का फर्क होता है कि कोई जो है वो बहुत ही कम दर्जे का दोस्त होता है और कोई बहुत ज्यादा दर्जे का दोस्त होता है। ठीक है, तो वली का मतलब दोस्त ही होता है ना। तो दोस्ती तो फिर आप किसी से थोड़ी देर के लिए मुलाकात करें और उससे थोड़ी बातचीत शुरू हो जाए तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इनसे मेरी दोस्ती हो गई। लेकिन थोड़ी देर की दोस्ती जो है वो आला दर्जे की दोस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप मिलते रहें मिलते रहें मिलते रहें और फिर जो है वो गिफ्ट्स एक्सचेंज करना शुरू कर दें, फिर उसके बाद जो है वो घर में दावत देना शुरू कर दें, है माशाल्लाह कितने सारे लोग अल्लाह ताला के घर में दावत के ऊपर पहुंचे हुए हैं हज के लिए, ठीक है, तो घर में दावतें होनी शुरू हो जाए तो फिर आपकी दोस्ती जो है वो बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी। यही फर्क है एक आम ईमान वाले में और एक कामिल दर्जे के वली के अंदर, ठीक है। तो सारे के सारे जो है ना वो ईमान मकबूल के अंदर ही आते हैं। अब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुफर की हकीकत और अकसाम, ये बहुत अहम तरीन डिस्कशन है, ठीक है। तो वो कैसे, तो फरमाते हैं कि कुफर चूंकि ईमान का मुकाबल और जिद है, ऑपोजिट है ये ईमान का, इसलिए इसकी वजाहत भी जरूरी है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि उसूल है वबे जिद देहा तत्मीनुल अशिया, ठीक है, कि जिद से जो है ना वो चीजों की पहचान हासिल होती है। एक बल्कि इस उसूल के, ये तो उसूल मैंने खुद भी ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन एक और भी उसूल है जो कि आपके सामने पहले भी बात हुई है कि अल अशियाउ यारिफू बे अज़दादिहा, कि चीजें जो है ना वो अपने जिद से पहचानी जाती हैं, ठीक है। कोई भी चीज आप उसको देख करके पहचानते तो हैं कि हाँ भाई ये इस चीज का ये नाम है, लेकिन उसकी हकीकत आपको उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक आप उसकी किसी ऑपोजिट चीज को ना देखें। सबसे बड़ी मिसाल इसमें हम देते हैं कि दिन, ठीक है जी, बिल्कुल, रोशनी और अंधेरा, ठीक है। तो दिन की हकीकत आपको उस वक्त तक कामिल तौर पर नसीब नहीं हो सकती जब तक आप रात को ना देख लें। रात को देखेंगे तब हकीकत में समझ में आएगा कि दिन क्या चीज थी, उसकी क्या अहमियत थी हमारी जिंदगी के अंदर, ठीक है, उससे हमें क्या फायदे हासिल हो रहे थे। अगर सिर्फ दिन ही दिन रहता, ठीक है ना, रात आती ही नहीं, तो हमें दिन की सही हकीकत जो है वो समझ में नहीं आती, ठीक है। तो अल अशियाउ यारिफू बे अज़दादिहा, कि चीजें जो है वो अपनी जिद से समझ में आती हैं। तो इसी तरह से ईमान को समझने के लिए कुफर को भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो ईमान की तारीफ में बयान फरमाया कि वल कुफरु तकजीबुन नबी फी शैइन बिम्मा जा अभी, कि कुफर क्या है, नबी अलैहिस्सलाम जो चीजें लेकर के आए हैं उनकी तकजीब करना, उनको झूठा कहना, ये कुफर है, ठीक है। एक मुख्तसर तारीफ कुफार की ये भी है कि अल्लजीना सतरुल हक्का इनादन, यानी जिन्होंने इनाद की वजह से हक को छुपाया, दुश्मनी की वजह से जो हक को छुपाते हैं, इकरार नहीं करते हक का, ये काफिर हैं। तो ये काफिरों की तारीफ लिखी, ये बात पहले लिखी जा चुकी है कि इस्लाम लाने के लिए जरूरी है कि पूरे इस्लाम के सारे अहकामात का आदमी इकरार और तस्दीक करे, ठीक है। उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकता जबकि हर चीज की तस्दीक ना करे, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि जो चीजें अकल में आ रही हैं उनकी तस्दीक कर रहा है, लेकिन जो अकल में नहीं आ रही उनकी तस्दीक नहीं कर रहा, ये शख्स मुसलमान नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी अभी एक मिसाल तो आपको दे चुके हैं, दूसरी मिसाल ये कि जी कुर्बानी क्यों करते हैं, राइट, कुर्बानी करने से जो है वो क्या फायदा होता है जी, इतना जो है वो खून भी बहाते हैं और सड़कें भी गंदी होती हैं और पैसे भी जाया होते हैं और काम का नुकसान होता है लोगों के, तो कुर्बानी क्यों करते हैं, ये तो मेरे अकल में नहीं आ रही बात, ठीक है। तो इसको जो है ना, यानी किसी भी चीज का इनकार कर दे जो कि शायर इस्लाम में से है और फराइज में से है, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी एक चीज का भी इनकार कर देने से, यानी ईमान लाने के लिए हर चीजों का इकरार करना और तस्दीक करना लाजमी है, लेकिन काफिर हो जाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जरूरियात दीन में से किसी एक हुक्म का इनकार कर दिया जाए, ठीक है। सबका इनकार करना जरूरी नहीं है, एक हुक्म का इनकार कर देना वो इंसान को काफिर बना देता है। इससे अवामुन नास के इस नजरिए की तर्दीद हो जाती है जो समझते हैं कि एक दो हुक्मों के इनकार से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। ये बड़ा कॉमन हमारे यहाँ एक जहन में आया हुआ लोगों के कि जी नो वन इज परफेक्ट, ठीक है, कोई परफेक्ट तो नहीं है ना, तो इस वजह से 100% चीजों का इकरार नहीं कर रहा, 95% चीजों का इकरार कर रहा है, 98% चीजों का इकरार कर रहा है। तो कोई परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट तो वो होगा कि 100% चीजों का इकरार करे। तो भाई नो वन इज परफेक्ट, तो इस वजह से एक दो चीजों का इनकार कर देना जो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यकीन करें, अभी मेरी किसी से मुलाकात हुई यहाँ रियासत हाय मुतहद्दा अमेरिका के अंदर, जो कि हमारे लिए नाउज बिल्ला जन्नत है, ठीक है, यहाँ पर तो हर चीज बड़ी अच्छी होती है ना, तो ईमान का क्या बनता है इधर, वो तो फिर अल्लाह ही जानता है कि हमारे ईमान के इधर आके क्या बनता है। बहरहाल एक साहब जो है वो ये कहने लगे कि किसी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, किसी ऐसे शख्स की तारीफ कर रहे थे जो कि नाम का मुसलमान है, लेकिन उसने कुछ बहुत ही गलत बातें कही हैं, ठीक है ना। तो मैंने उनको जरा टोका उस बात के ऊपर कि भाई आप उनकी मुसलमान होने के नाते जो तारीफ कर रहे हैं ना, तो उन्होंने तो इस तरह की बातें करी हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही जो है वो नाउज बिल्ला यानी बुनियाद के खिलाफ है, ठीक है, जरूरियात दीन के खिलाफ है। तो उसके ऊपर उन्होंने यही जवाब दिया मुझे, क्या जवाब दिया, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है, कि कोई परफेक्ट नहीं है। तो उन्होंने अगर इस तरह की दो चार गलत बातें कह दी हैं तो क्या हो गया, ठीक है, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। पहले तो मैं जरा ना हक्का बक्का सा रह गया कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, मैं खुद क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। फिर अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई साहब, ये जो नो वन इज परफेक्ट वाला जुमला है ना, ये आमाल पर अप्लाई होता है, ठीक है, आमाल पर, कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम में से किसी के आमाल परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियां हो जाती हैं, सबसे गुनाह हो जाते हैं, कुल्लु बनी आदम खताउन, राइट, नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर आदम की औलाद जो है वो खताकार है, गुनाहगार है, ठीक है। तो क्या मतलब, आमाल के एतबार से, अकीदे के एतबार से नहीं, अकीदे में आप ये नहीं कह सकते कि नो वन इज परफेक्ट, तो क्या हो गया अगर उसने दो चार बातों का इनकार कर दिया, नहीं, अकीदे का मामला नहीं है ये। अकीदे में क्या है, अगर दो चार बातों का इनकार कर दिया, काफिर हो गया वो, राइट, ईमान वाला रहा ही नहीं, चाहे उसका नाम कितना ही मुसलमान वाला क्यों ना हो, और कितने ही जो है वो मुसलमानों के सपोर्ट में जो है वो नारे क्यों ना लगाता हो, ठीक है, मुसलमानों के कॉज के बारे में कि जी बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और फलानी जगह पर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, तो उसके नारे लगाने से क्या होता है, वो बंदा तो काफिर हो गया अगर उसने जरूरियात दीन का इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना अभी, ये ऐसी आपको किताबें नहीं पढ़ा रहे हम, यानी जो जिन मसलों से उम्मत इस वक्त गुजर रही है, प्रैक्टिकली हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लोग इस तरह की गलतफहमी में मुब्तला हो करके अपने ईमान से हाथ धो गए धो रहे हैं, राइट, ईमान से हाथ धो रहे हैं, तो इस वजह से इन बातों को हम ऐसी खामखा में आपको नहीं पढ़ा रहे। तो फरमाया कि काफिर हो जाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि जरूरियात दीन में से किसी एक हुक्म का इनकार कर दिया जाए। इससे अवामुन नास के इस नजरिए की तरदीद हो जाती है, जो समझते हैं कि एक दो हुक्मों के इनकार से कुछ भी नहीं होता। हम तो कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जैसे कि आजकल खास तौर पर बहुत एक डिस्कशन चली हुई है, अब उसकी हकीकत क्या है वो हम नहीं कह रहे, ठीक है, लेकिन डिस्कशन तो चली हुई है ना कि जी कादियानी जो हैं वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मस्जिद में आके नमाज भी पढ़ लेते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल भी मानते हैं, किस बात का इनकार करते हैं, बजाहिर सिर्फ एक बात का इनकार करते हैं, ठीक है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, बाकी सारी बातों का इकरार करते हैं, ठीक है। तो क्या एक बात का इनकार करने से वो मुसलमान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं, वो मुसलमान नहीं रहते, वो काफिर हो जाते हैं, इसलिए कि खत्म नबूवत जो है ये जरूरियात दीन में से है, ठीक है। अच्छा, तो ये लोग कहते हैं ना कि जी हम तो कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो काफिर तो वो होगा जो पूरी शरीयत के एक एक जुज का इनकार करे और इस्लाम से भाग जाए, ठीक है, ये अवामुन नास में एक जनरल कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लेकिन ये हर अवामुन नास में नहीं है, सारे अवामुन नास में कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये उन अवामुन नास में होता है कि जो कि उलमा से जुड़ करके नहीं रहते हैं, उलमा से पूछ कर नहीं चलते हैं ना, ये उन अवामुन नास के अंदर इस तरह के फिर बातें शैतान डाल देता है, ठीक है। अब यहां पर कुफर की चंद अकसाम भी उलमा ने बयान की हैं, इन अकसाम को जरूरी समझना है। पहली किस्म होती है कुफर इनकार, इसकी क्या तारीफ है, जो शख्स दिल और जुबान से शिद्दत के साथ इस्लाम का इनकार करता है, ये कुफ्र इनकार है। इसी पर आम कुफार है, ठीक है, जिनको हम काफिर कहते हैं, नॉन मुस्लिम समझते हैं। तो ये नॉन मुस्लिम क्यों होते हैं? क्योंकि जुबान और दिल से ये शिद्दत के साथ, बड़ी सख्ती के साथ इस्लाम का इनकार करते हैं, ठीक है। इसको कुफ्र इनकार कहा जाता है। इसके बाद है कुफ्र जहूद, वो ये है कि दिल से दीन हक को सच्चा समझता है। यहां से वो बातें शुरू हो रही है जिनका हमसे ताल्लुक है, हमारे ईमान की हिफाजत, हमारी औलाद की ईमान की हिफाजत के साथ जिन बातों का ताल्लुक है ना, वो यहां से शुरू होती है, ठीक है। तो कुफ्र जहूद क्या होता है? वो ये कि दिल से दीन हक को सच्चा समझता है, उसकी हक्कानियत का कायल है, लेकिन जुबान से इकरार नहीं करता बल्कि इनकार करता है, ठीक है। जुबान से इकरार नहीं करता बल्कि इनकार करता है, यानी खूब जानता है। क्या मतलब क्या खूब जानता है? खूब जानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मानता नहीं है, जुबान से इकरार नहीं करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इख्तियार नहीं करता। दिल से मानता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जुबान से इकरार नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में अपने आप को नहीं झुकाता, तो ये काफिर होता है। ये क्या होता है? ये काफिर होता है। दिल से मानने से ये दिल से मानने से या जानने से ये मुसलमान नहीं बन जाता, ठीक है। और इसकी मिसाल क्या है? मिसाल से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर मिसाल ना होती है ना, तो फिर शायद हमारी बात समझ में ना आती। मिसाल क्या है? इबलीस की मिसाल, ठीक है। इबलीस को सब पता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इबलीस आलिम है, आरिफ है, उसको इरफान भी हासिल है, उसको इल्म भी हासिल है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो काफिर है, क्योंकि सब कुछ जानने के बावजूद वो मानता नहीं है, ठीक है, यानी इकरार नहीं करता और अतात नहीं करता, तो वो काफिर है। उसी तरह यहूदी, ठीक है, यहूदियों के बारे में कुरान गवाह है कि फरमाता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, यानी इनको इस बात में कोई शक नहीं है कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मानते नहीं है इस बात को, इकरार नहीं करते, ठीक है। तो ये काफिर हैं और इनको, इस कुफर को कुफरे जहूद कहा जाता है। अब ये हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होता है? क्योंकि हमारा तो ये मामला नहीं है कि हम जुबान से इकरार नहीं कर रहे, हम तो जुबान से भी इकरार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम भी ये ऐसे अप्लाई होता है कि हम कभी जो है ना, वो ऐसे शख्स को जो कि जुबान से इकरार नहीं करता, हम कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये भी तो मुसलमान ही है। दिल में झांक के देखें तो पता चलेगा कि ये भी मुसलमान है। भाई दिल में झांक के देखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना, नियतों को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये एक अलग डिस्कशन है जो कि हमने इंशाल्लाह इसके बाद करनी है, ठीक है। नियतों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर हो रही है कि जाहिर क्या है, जाहिर के बगैर नियतों का कोई एतबार नहीं है, ठीक है। तो ये शख्स जो है वो जो कि जाहिर में इकरार नहीं करता, तो ये शख्स काफिर है, ठीक है। कुफ्र इनाद व मुआनिदा, ये तीसरी किस्म का कुफर कुफर होता है। वो ये है कि इस्लाम को दिल से भी सच्चा जानता है और जुबान से भी इकरार करता है, ठीक है, दिल और जुबान दोनों उसके शामिल है इसके अंदर, लेकिन अब ये हम पर अनफॉर्चुनेटली इस दौर में पूरा का पूरा अप्लाई होता है, ठीक है, कि लेकिन दीन हक के अलावा अदियाने बातिला से बेजार नहीं होता, ठीक है, जो दूसरे दीन हैं उनसे बेजारी नहीं उसके अंदर है, वो दूसरों को भी सही समझता है, दूसरों को भी अच्छा समझता है, बड़ा अच्छा दीन है जी उनका, है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। मिसाल के तौर पर हम जो है वो, हमें पता तो नहीं होता ज्यादा, तो हम जो है ना वो अगर कोई काफिर अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दे ना, इखलाकियात की बातें करना शुरू कर दे और जो है वो बड़ी यानी मोहब्बतों की बातें करना शुरू कर दे ना, तो हम उसको कोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हम उसकी जो है ना वो वीडियोस जो है वो शेयर करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है, हालांकि वो अपने कुफर की बुनियाद पर वो बातें कर रहे हैं। ये नहीं कि वो बतौर इंसान के खाली ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को बाकायदा प्रेजेंट करके कि वो बुद्धिस्ट है, ठीक है ना, बुद्धिज्म के लिबास में वो ये बातें कर रहा है, ठीक है। तो वो बतौरे अपने दीन के हिस्से के तौर पर ये बातें कर रहा है, दीन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है इस तरह की प्यार और मोहब्बत वाली बातें करके, ठीक है। तो हमें उनसे बेजारी का इजहार भी करना है, बेजार होना है कि नहीं इनके दीन से मैं ये बातें क्यों लूं, जबकि अल्लाह ताला ने ये सारी बातें मुझे कुरान में समझाई हैं, बताई हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये सारी अखलाकियात, कामिल अखलाकियात आपके यानी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। अब हमें किसी बुद्धिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है इन चीजों में, राइट? किसी काफिर, किसी यहूदी, किसी हिंदू के पास जाने की क्या जरूरत है, ठीक है? हम अपने कुरान से, अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से इन चीजों को लेंगे, ठीक है। तो अपने दिल में उनके लिए बेजारी होना, ठीक है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो ये जो लोग हैं ना, अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जो कि इस्लाम को दिल से भी सच्चा जानता है और जुबान से भी इकरार करता है, लेकिन दीन हक के अलावा अदियान बातिला से बेजार नहीं होता, बल्कि उनको भी अच्छा समझता है और दीन हक की अतात नहीं करता, ठीक है, यानी नबी रसूलुल्लाह के हुक्मों पर अमल नहीं करता, ठीक है, तो ये शख्स भी काफिर है। इसको कुफ्र इनाद व मुआनिदा कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? हेराकल, हेराक्यूलस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है, जो कि ईसाइयों का बादशाह था नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, और नबी अलैहिस्सलाम ने जब खतूत लिख करके बादशाहों को इस्लाम की तरफ दावत दी थी तो एक खत हेराकल को भी भेजा था, ठीक है, और हेराकल ने आप के उस खत को पढ़ करके बहुत तारीफें करी थी। पहले तो उसने लोगों को बुलाया था ना, मक्का मुकरमा से अगर कोई यहाँ पर आया हुआ हो तो उनको बुलाओ, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो अबू सुफियान वहां पे मौजूद थे, तो अबू सुफियान को उसने अपने दरबार में बुलाया था और फिर उनसे बहुत सारे सवाल किए थे, जिसके के उन्होंने जो जवाब दिए तो इसने इकरार किया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहां तक कहा, जो कि इसी किताब में आगे नकल भी है, कि हिरकल ने कहा था, सही बुखारी की गालबन रिवायत है जो आखिर मनकूल है, कि उसने कहा था कि अगर ये मेरे पास होते तो मैं इनके पैर धोता, यानी इतनी इनकी इज्जत करता कि इनके पैर में अपने हाथों से धोता। कहाँ लिखा हुआ है ये, कोई मुझे बता सकता है कि जिन्होंने पढ़ी हुई है ये? हिरकल के अल्फाज हाँ, हिरकल ने यहां तक कहा, सही बुखारी के ये अल्फाज हैं, कि अगर मैं इस नबी के पास होता तो मैं आपके कदमों को धो लेता और खिदमत करता, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करता, ये हिरकल ने कहा था, ठीक है। तो ये हिरकल जो है ना, इसकी पहली मिसाल है, और दूसरी मिसाल कौन है? नबी अलैहिस्सलाम के अपने सगे चचा अबू तालिब, ठीक है। तो अबू तालिब और हिरकल के दोनों में इनकियाद जाहिरी नहीं था, ये नबी अलैहिस्सलाम की कोई दुश्मनी नहीं करते थे, ये नबी सल्लम के साथ दोस्ती का मामला इन्होंने किया था, ऐसी बातें करी थी, मैं खिदमत करता, ठीक है। तो ये भी कुफर है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने किस चीज का इनकार नहीं किया था? इन्होंने जो अपने अदियान थे ना, उनका इनकार नहीं किया था। हिरकल ने ईसाइत का इनकार नहीं किया और अबू तालिब ने शिर्क यानी बुतपरस्ती का इनकार नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से दोनों जो है वो काफिर ही रहे। चौथी चीज है कुफ्र निफाक, ठीक है। कुफ्र निफाक ये वो है कि दिल में तकजीब व इनकार है, सिर्फ मसलहत और अगराज दुनियाविया के लिए जुबान पर इकरार है, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और उसकी पार्टी ख्वाह कोई भी हो। निफाक के इस शोबे के तहत दीगर बहुत सारे अहले बातिल, जिंदीक, रवाफिज, रवाफिज कौन होते हैं? जो ये जो शिया जिनको हम कहते हैं ना, तो शियाओं की जो की अक्सर जो फिरके हैं, शियाओं के अंदर भी बहुत सारे फिरके होते हैं, ठीक है, तो उनके जो अक्सर फिरके हैं ना, तो वो रवाफिज के अंदर आते हैं, और रवाफिज जो हैं वो यानी कुफ्र निफाक का शिकार होते हैं। आगा खानियों को पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो बड़ा ऑफिशियल मुकाम दिया जाता है और बड़ा मुसलमान उनको कहा जाता है, लेकिन उनके अकायद जो है ना वो इस्लाम वाले नहीं होते हैं, इस्लाम के बहुत खिलाफ होते हैं, तो वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनका मुसलमान कहना जो है वो उनको मुसलमान बना नहीं देता, लेकिन चूंकि उनका मामला जो है वो बहुत यानी थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, तो खानियों के को काफिर करार दिए जाने के ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा कोई तहरीक वगैरह नहीं चली है, क्योंकि ये साजिशें वगैरह इस्लाम के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ करने में ऐसे इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि जो अगला फिरका है, अगला अगला जो यानी तबका है कादियानी, वो इन्वॉल्व है साजिशों के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से कादियानियों के ऊपर जो है वो खास तहरीक चला करके उनको काफिर करा दिया गया है पाकिस्तान के आइन के अंदर। तो कुफ्र नफाक के अंदर फिर ये जो अहले बातिल जिंदीक तबके होते हैं, जिनमें रवाफिज हैं, आग खानी हैं, कादियानी हैं, बहाई हैं, परवेजी हैं, ठीक है, और एक किस्म के कॉम्युनिस्ट भी दाखिल हैं जो कि कॉम्युनिस्ट अकायद के ऊपर ईमान रखते हैं, अगरचे कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो ये भी कुफ्र नफाक के अंदर दाखिल हैं कि बवक्त ज़रूरत कलमा तो पढ़ते हैं, नमाज भी अदा कर लेते हैं, जैसे कादियानी तो मुसलमानों की मस्जिद में आके नमाज अदा करते हैं, मगर दूसरी तरफ दीन की जरूरियात में से किसी अमरे जरूरी का इनकार करते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे कादियानियों को भी जानते हैं कि जो कि मुसलमानों की मस्जिद में आकर के इमामत भी कराते हैं, ठीक है, और पीछे जो है वो मुसलमानों की नमाज भी पढ़ लेते हैं, जमात की नमाज पढ़ लेते हैं। इनके मुख्तलिफ दरजात हैं, बाज निफाक में हैं और बाज वाज़ह कुफर में जा पड़े हैं, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ एतराजात नकल किए हैं और उनके जवाब दिए हैं, ठीक है, कि भाई ये यहूदी जो हैं वो कैसे मुसलमान नहीं है, कैसे काफिर हैं, क्योंकि वो तो आपसे वसलम को पहचानते थे, तो इसका भी जवाब दिया उन्होंने। फिर हिरकल और अबू तालिब की तफसील लिखी है एतराज़ नंबर 2 के तहत, ठीक है, कि कैसे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार किया, ठीक है ना, और अपने यानी अपनी शायरी के अंदर अबू तालिब ने बाकायदा ये भी कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, ठीक है, आपसे सल्लम के सच्चे होने का की सच्चाई का दावा किया और आपसे सल्लम के अमानतदार होने का भी दावा किया, लेकिन सिर्फ इस वजह से अपने मुसलमान होने का इकरार नहीं किया कि उनको आर दिया करते थे ये काफिर, ये अबू जहल जो है उनको यानी आर दिया करता था कि तुम जो है ना वो डर करके मुसलमान हो रहे हो, ठीक है, आग से डर के मुसलमान हो रहे हो, ठीक है। क्या पूछ रही है कि पाकिस्तानी आईन में तरमीम हो गई है कादियानी के लिए, कादियानी के लिए की तरमीम से क्या आपकी मुराद है, कादियानी को मुसलमान करार देने की तरमीम हो गई है या काफिर करार देने की तरमीम, कौन सी वाली तरमीम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुफर की जो तारीफात यहाँ पर है ना, तो ये इस दौर के अंदर ईमान की हिफाजत के लिए जानना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में मुसलमान मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से और तालीमी इदारों में जो काफिरों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जा रही होती हैं, हमें निसाब जो है वो भी काफिरों का ही बनाया हुआ निसाब पढ़ाया जा रहा होता है, और अगर हम किसी ऐसे मुल्क में रहते हों कि जहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की नहीं है बल्कि काफिरों की है, जैसे इंडिया, जैसे यूरोप का कोई मुल्क, जैसे अमेरिकास या जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ठीक है, तो वहां पर काफिरों के साथ बहुत ज्यादा हमें वास्ता पड़ता है, तो इन वास्तों की वजह से ना ये जो उनके अदियान से बेजारी वाला मामला है, ये बेजारी वाला मामला जो है वो दिनों के अंदर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हत्ता के यहां तक नौबत आ जाती है कि उनका दीन जो है ना वो भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है, या हम किसी तरीके से जुबान से उनके दीन की बातों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हमें इतना पता नहीं होता कि इसके करने से जो है वो इंसान काफिर हो जाता है, ठीक है। मुसलमान करार देने की तरमीम, ऐसा सुना है नहीं है, ये तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुई नहीं है और ना जो है वो इसकी कोई तहरीक स्टार्ट हुई है अभी, ठीक है, तो अफवाहें भी बहुत ज्यादा असल में फैली हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत यानी बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती की बात है कि एक तो जो दुश्मन है ना सरीह दुश्मन है, तो वो अफवाहों को फैलाने का काम, अफवाहों को स्टार्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन दीन के जो वफादार होते हैं ना, दीन पर अमल करने वाले दीनदार हमारे जैसे, ठीक है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उन अफवाहों की तस्दीक किए बगैर उनको फैलाने का काम जो है वो बड़े शद्दोमद से करते हैं, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, हम ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम इन अफवाहों को आगे फैला देते हैं और हमें नहीं पता होता कि उसके अंदर कितना झूठ है, किसी शख्स को जो है वो कादियानी करार दे दिया, किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज चलाया और एक शख्स के की तस्वीर के ऊपर कादियानी लिख दिया, ठीक है, अब हमने जो है वो अपना दीनी फरीजा समझ करके उस तस्वीर को आगे बढ़ाना होता है, हालांकि हमें नहीं पता होता कि वो कादियानी है भी कि नहीं है, किसने लिखा है उसके ऊपर कादियानी, ठीक है ना, तो इससे जो है ना वो हम दीन का भी फायदा नहीं कर रहे होते और अपना भी फायदा नहीं कर रहे होते, दीन का भी नुकसान कर रहे होते हैं। किस तरह से कि ऐसी बातें थोड़े देर के बाद पता लग जाता है कि ये झूठ है, ठीक है ना, ये झूठ उनका खुल के सामने आ जाता है। अब जिन जिन को पता लगता है कि ये झूठ है तो वो देखते हैं कि भाई ये किसने भेजा, तो ये भेजने वाला जो है ये तो बड़ा मौलवी था, ये जो है बड़ा दीनदार था, ये तो बड़ी जो है वो आलिमा थी जिन्होंने कि ये मैसेज मेरे मुझे भेजा है, तो उन्होंने ऐसी बात कैसे मुझे भेज दी, तस्दीक किए बगैर किसी को कादियानी कैसे कह दिया। तो अब उसके दिल में जो है ना वो और नफरत बढ़ती है दीन वालों के खिलाफ, और ज्यादा नफरत बढ़ती है, और ज्यादा जो है वो हकारत बढ़ती है, ठीक है। तो इससे जो है वो हम दीनी कॉज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी बात की तस्दीक किए बगैर उसको आगे फैला दे तो उसके झूठा होने के लिए वही बात काफी है, ठीक है। तो बहुत यानी बार बार मैं ये बात करता हूं और बार बार दोहराने की जरूरत है कि मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करना छोड़ दें, मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करना छोड़ दें। अगर बहुत ज्यादा दिल के अंदर तकलीफ उठ रही है कि करना है मुझे फॉरवर्ड, तो पूछ लें पहले, कंफर्म करें अपने उलमा से, अपने मशायख से, और संजीदा उलमा मशायख, ये नहीं कि छोटे मोटे शितुंगड़े किस्म के जो होते हैं ना कहीं से कुछ किताबें पढ़ के जो है मौलवी बन गए, ठीक है, उनसे नहीं, अपने मशायख से पूछें, ठीक है ना, और जरा मुस्तरद किस्म के और यानी सीरियस किस्म के जो जो लोग होते हैं उनसे पूछें कि क्या आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, और अगर वो कह दे नहीं तो नहीं, ठीक है, उस तकलीफ को अपने दिल के अंदर से खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी और बात आपके सामने रखनी थी क्लास खत्म होने से पहले, वो ये कि एक हमारे अंदर जो है ना ये एक बड़ी जो है ना वो फिक्र फैली हुई है कि जी नीयत बड़ी अच्छी चीज हो, नीयत बहुत जबरदस्त चीज होती है, ठीक है, और ये जो नीयत के अच्छी अच्छी होने वाली बात है ना, तो ये यहां तक अगर रहे तो फिर तो ठीक है कि भाई इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है, यहां तक तो बात ठीक है, ठीक है, लेकिन हम इस लिमिट तक रहते नहीं है, बल्कि हम इससे आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और हम इस तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं कि गोया के नीयत ही काफी है, ठीक है, नीयत जरूरी नहीं बल्कि नीयत ही काफी है। तो ये जो हम बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं ना नीयत की जरूरत से तजावुज करके नीयत ही को सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्योंकि ये जो हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन भी तो यही कह रही है ना कि भाई तस्दीक बिल कल्ब, कल्ब से तस्दीक करना काफी नहीं है जब तक आप जुबान से इकरार ना करें, तो जाहिर का जो है वो इतनी अहमियत है कि जाहिर के बगैर जो है वो कल्ब के इकरार की कोई तस्दीक यानी कोई एतबार ही नहीं है कल्ब के इकरार का। तो जिस तरह से कल्ब का काम है तस्दीक करना, उसी तरीके से नीयत बनाना ये भी कल्ब का काम है, ठीक है, और तरीके का सही होना, अमल का सही होना, ये आज़ा और जवारे से होता है, यानी हाथ पैर से, जुबान से, आंखों से, कान से, नाक से, ठीक है ना, ये इनसे क्या होता है, इनसे जो है वो अमाल का ठीक होना होता है। तो कल्ब का ताल्लुक जो है वो नीयत से है, और अमल का ताल्लुक इंसान के हाथ पैर से है, आज़ा और जवारे से है, ठीक है। तो हमारा दीन जो है वो इन दोनों को साथ रखता है, ठीक है ना, किसी एक को छोड़ करके दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता और दूसरे को छोड़ करके पहले को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से बंदे की नीयत का अच्छा होना ये काफी नहीं है। इसके ऊपर चंद मिसालें कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करते हैं, ठीक है ना, कितने ऐसे वालदैन हैं कि जिन जो कि अपनी औलाद को स्पॉइल करते हैं या अपनी औलाद को जो है वो गलत बातें सिखाते हैं, ठीक है, हत्ता कि वो औलाद जो है वो गुनाह के रास्ते पे पड़ जाती है, हराम के रास्ते पे पड़ जाती है, हत्ता कि लोगों को तकलीफ देने के रास्ते पे पड़ जाती है, और फिर वो हमें भी तकलीफ दे रही होती है, तो फिर हमें बहुत बुरी लगती है, और हम क्या कहते हैं कि जी इसके वालदैन ने इसको क्या सिखाया है, ठीक है ना, इसके वालदैन ने इसकी अच्छी तरबियत क्यों नहीं करी, इसके वालदैन ने इसको नेकी क्यों नहीं सिखाई, गुनाह से बचना क्यों नहीं सिखाया, ठीक है। तो ये हम कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हम ये बात कहते हैं, लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके वालदैन की नीयत अच्छी नहीं थी, इस
कि वालदैन की अपने औलाद के मामले में नीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इसकी अच्छी तरबियत नहीं करी। ऐसा हम कह सकते हैं किसी वालदैन के बारे में? नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि वालदैन जो होते हैं वो जनरल रूल ये है कि वालदैन अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं, ठीक है ना। तो जिस चीज को वो भला समझते हैं वो अपने औलाद को सिखाते हैं, जिस चीज को वो भला समझते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भलाई होती है तो वो जरूरी तो नहीं है कि वो भलाई हो, वो बहुत गलत बातें भी अपनी औलाद को सिखा देते हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ इस बात पर तवक्कुफ नहीं कर सकते कि जी उनकी नीयत तो अच्छी थी। भाई नीयत अच्छी थी, अमल तो अच्छा नहीं था ना। तो अमल के अच्छा ना होने की वजह से उन्होंने अपनी औलाद को क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया, ठीक है, हमें तकलीफ देने वाला बना दिया। जो हमें तकलीफ देता है वो तो बुरा ही होता है ना, राइट। दूसरों को तकलीफ देने वाला तो हमारे नजदीक कोई खास बुरा नहीं होता, जो हमें तकलीफ देता है वो तो बुरा ही होता है। तो किसी की औलाद जब हमें तकलीफ देती है तो हमें इस बात का 100% यकीन होता है कि वो बुरा है। लेकिन उसके वालिदैन ने जो इसको ये बातें सिखाई हैं तो इसकी बुनियाद पर हम ये तो नहीं कह सकते कि वालिदैन की नीयत खराब थी। तो भाई सारे वालिदैन की नीयत अपनी औलाद के लिए अच्छी होती है, वो अपनी औलाद का भला ही चाहते हैं। लेकिन अमल ये भी जरूरी होता है कि अमल भी अच्छा होना चाहिए, औलाद की तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए। इस बात का हम इनकार कर सकते हैं? कोई कर सकता है अपने से इनकार इस बात का कि खाली नीयत काफी नहीं है बल्कि अमल भी सही होना चाहिए, अपने औलाद की तरबियत भी सही करनी होती है, ठीक है ना। उसी तरीके से ईसाई और यहूदी और मुशरिक और जितने भी काफिर हैं, ठीक है ना, जितने भी काफिर हैं उन सब के बारे में हम ये बात जानते हैं कि ये सारे के सारे काफिर, चाहे किसी भी दीन के फॉलो करने वाले हो, ये सारे के सारे अपने परवरदिगार को पहचानते हैं। इनकी फितरत में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरा नासा अलैहा, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को फितरत पर बनाया है। और ये फितरत क्या चीज है, हदीसों से भी साबित है और अकल से भी साबित है कि ये फितरत परवरदिगार की पहचान है। और हर इंसान के अंदर ये फितरत अल्लाह ताला ने बाय डिफॉल्ट डाली हुई है। हर इंसान अपने परवरदिगार को पहचानता भी है, बल्कि इसके आगे मजीद ये कि वो अपने परवरदिगार तक पहुंचना भी चाहता है, वो अपने परवरदिगार को चाहता भी है, उसको खुश भी करना चाहता है। हर इंसान, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ मोमिन नहीं, हर इंसान परवरदिगार को अपने खुश करना चाहता है, ठीक है। और ये बात साबित है कुरान से। क्या है वो कुरान की आयत, 30वें पारे के अंदर, कल्ला इन्ना अर्रब्बी यौम इज़िल लमहजूबून। क्या है वो पूरी आयत, हाफिजा साहिबा हैं आपके क्लास में, इन्नहुम अर्रब्बी यौम इज़िल लमहजूबून, के कयामत के दिन ये जो काफिर होंगे अपने रब से हिजाब में होंगे, ठीक है। तफसीर क्या है इसकी, के कयामत के दिन काफिरों की सजाओं में से एक सजा ये होगी कि इनको अल्लाह ताला के दीदार से रोक दिया जाएगा, अल्लाह के दीदार से रोक दिया जाएगा, ये इनकी सजा होगी। क्यों ये सजा होगी इनकी, भाई ये तो अल्लाह के दुश्मन है, ठीक है ना, ये तो अल्लाह ताला को चाहते ही नहीं है, यही है ना हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो भाई जो किसी का दुश्मन होता है वो उसका दीदार क्यों करना चाहेगा, और उसके दीदार से रोक दिया जाना उसके लिए सजा क्यों बनेगी। मैं अमरीका आना ही नहीं चाहता, तो कोई आके मुझसे कहे कि अमेरिकन एम्बेसी वाले आके मुझसे कहें कि जी हमने आपको हम आपको वीजा नहीं देंगे अमेरिका का, ठीक है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, भाई मुझे चाहिए ही नहीं है वीजा अमेरिका का, मुझे अमेरिका देखने का कोई शौक ही नहीं है। आप मुझे वीजा नहीं दें तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई इस बात से, कि मेरे लिए कोई सजा कोई थोड़ी है कि आपने मुझे अमेरिका का वीजा नहीं दिया, मैं तो देखना ही नहीं चाहता अमरीका, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर काफिर अल्लाह को देखना ही नहीं चाहते तो अल्लाह से हिजाब में रखना ये उनकी सजा कैसे बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अल्लाह को देखना चाहते हैं और ये हिजाब उनके लिए सजा है कयामत के दिन, ठीक है। तो हर काफिर जो है वो अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है, अपने परवरदिगार को राजी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या ये काफी है, उनके दिल की ये नीयत काफी है? नहीं, क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, या अपने दौर में जो पुराने जमाने के काफिर थे उन्होंने जो नबी अल्लाह ने उनके पास भेजा उन्होंने उस नबी की अतात इख्तियार नहीं करी, इस्लाम इख्तियार नहीं किया, ठीक है। तो अपने दिल की चाहत की वजह से उनकी निजात नहीं होगी, वो जन्नत में नहीं डाले जाएंगे, वो मुसलमान नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या ये बात, इस बात में किसी को कोई इनकार हो सकता है कि दिल की नीयत कितनी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, अगर अमल खिलाफ है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अमल चल रहा है, तो उस नीयत के कोई फायदा नहीं है, उस नीयत का कोई एतबार नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना हमारी भी जो होती है वो बहुत सारे मामलात में नीयत अच्छी होती है, लेकिन हम भी जो है वो इनकार कर रहे होते हैं। जो अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है, जिसको कि सुन्नत कहा जाता है, जो नबी रसूल अलैहिस्सलाम के जरिए से हम तक पहुंचा है, हम उस तरीके का इनकार कर रहे होते हैं। ठीक है कि भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, या मुझे जो है वो इस तरीके को सीखने की जरूरत नहीं है, मेरी तो नीयत अच्छी है जी। ठीक है, तो मेरी नीयत जो है वो अल्लाह ताला कबूल कर ले। ठीक है ना, क्योंकि हम दीनदार मुसलमान होते हैं ना, तो दीनदारी की वजह से फिर हम इस तरह की बातें करते हैं, हमारी नीयत को अल्लाह ताला कबूल कर ले, फलाने की नीयत को अल्लाह ताला कबूल कर ले, उसकी नीयत बड़ी अच्छी है। तो भाई नीयत अच्छी है तो फिर अमल क्यों नहीं, राइट, अमल भी तो कुछ होना चाहिए ना। अमल अच्छा, अच्छा अमल अच्छे का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जी वो जो है वो बहुत ही तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे तब हम मानेंगे कि उसकी नीयत अच्छी है, ठीक, या जो है वो तहज्जुद जो है वो पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे तब हम मानेंगे कि उसकी नीयत अच्छी है। नहीं, अमल का मतलब ये नहीं है, बल्कि अमल का मतलब यहां पर क्या है कि नीयत अच्छी है तो भाई आपको नबी अलैहिस्सलाम सलाम के जो तरीका है उस तरीके पे चलने का इकरार तो करना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं जी मुझे अंबिया की जरूरत ही नहीं है, तो आपके इस नीयत के अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है। तो चूंकि यानी जिस तरह से पुराने जमाने में नबी अलैहिस्सलाम सलाम के जमाने में उन लोगों की नीयतों को कबूल नहीं किया जाता था जब तक कि वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम की बात ना मान लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इख्तियार ना कर लें, उनके इस नीयत के अच्छे होने का कोई एतबार नहीं किया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दौर हमारे जमाने के अंदर नबी के जो वारिस हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के जो वारिस हैं, जिनको उलमा और मशायख कहा जाता है, ठीक है, अगर हम उलमा और मशायख से पूछ कर नहीं चलेंगे, ठीक है, उनसे नहीं सीखेंगे कि भाई कौन सा वाला तरीका जो है वो सुन्नत वाला तरीका है, ठीक है, कौन सा वाला काम जो है वो सुन्नत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, तो जब तक हम ये बात नहीं सीखेंगे ना, तो उस वक्त तक खाली हमारी नीयत का एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमारी नीयत की बुनियाद पर जो है ना वो हम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि भाई नीयत तो बड़ी अच्छी है, मेरी नीयत बड़ी अच्छी है या फलाने की नीयत बड़ी अच्छी है, ये कहने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक उलमा मशायख से सुन्नत तरीके को सीखा नहीं जाएगा, ये हुक्म है कुरान का। ठीक है, कुरान का हुक्म है कि इन लोगों से जो लोग अल्लाह वाले कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी अपने जिंदगियों को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया होता है ना, डेडिकेट किया होता है, ठीक है, इन लोगों से अपने आप को नत्थी रखो। वस्बिर नफ्सका अला वस्बिर नफ्सका मअल लजीना यदउन रब्बहु बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला की रजा के खातिर दिन रात लगे रहते हैं, अपने आप को इन लोगों के साथ नत्थी करके रखो। और इसकी तफसीर में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, ठीक है, कि इन लोगों से अपने दुनियावी मामलात में भी मशवरा करो, दीनी मामलात में तो चलो फिर भी हम कुछ मशवरा कर लिया करते हैं, दुनियावी मामलात के अंदर हम कोई मशवरा नहीं करना चाहते। दुनियावी मामलात को ना हम समझते हैं कि ये इसका ताल्लुक तो अल्लाह से है ही नहीं, इसका ताल्लुक अल्लाह के दीन से है ही नहीं, राइट, इसमें तो जी हमने जो है वो काफिरों से मशवरा करना है, इसके अंदर तो हमने जो है वो तो यानी बेदीन लोगों से मशवरा करना है, ठीक है, चाहे वो किस किस्म के भी लोग हों, हमें उन्हीं से पूछ करके चलना है, उन्हीं के मशवरे के ऊपर अमल करना है, ठीक है, इसके अंदर दीन का कोई अमल दखल नहीं है, इस वजह से उलमा के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, हमें राइट मशाइख से पूछने की हमें कोई जरूरत नहीं है अपने दीगर मामलात के अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला की डिमांड हमसे यह है वस्बिर नफ्सका, अपने आप को जोड़ करके रखो, नत्थी करके रखो, टाई करके रखो, गोया कि आप खड़े हुए हो और आपके बराबर में उलमा मशाइख खड़े हुए हो और ये रस्सी के साथ बंधे हुए हो, ठीक है ना, ये मतलब होता है इसका नत्थी किए जाने का, वस्बिर नफ्सका का ये मतलब होता है। ठीक है, तो फकत नीयत का अच्छा हो जाना ना ये काफी नहीं है, वरना जरूरत ही क्या थी अंबिया को भेजने की। भाई हर बंदा जो है वो उसकी नीयत अच्छी है, हर बंदा अपने परवरदिगार को राजी करना चाहता है, हर बंदा जो है वो यानी जो वो समझता है कि ये नेकी है वो ही नेकी करना चाहता है, वही अच्छा काम करना चाहता है। अल्लाह को जरूरत ही क्या थी कि नबी अलैहिस्सलाम को भेजें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजें, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजें, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजें, 1,24,000 अंबिया भेजने की जरूरत क्या थी अगर नीयत काफी होती। तो जरूरत थी इसलिए कि अल्लाह ताला के नजदीक नीयत काफी नहीं है, अल्लाह ताला तरीका भी सही करवाना चाहते हैं, ठीक है। और जो तरीका सही करने से इनकार कर देता है, अंबिया के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार कर देता है, उसकी नीयत का फिर कोई एतबार नहीं होता, ठीक है। अब यही बात जो है मुसलमानों पर कैसे अप्लाई होती है कि मुसलमान जो है वो अकीदे के एतबार से तो चलो वो बात मान लेते हैं, लेकिन अमल के अंदर कहते हैं कि जी हमें कोई जरूरत नहीं है पूछने की, ठीक है। अमल जो है वो मैं अपने अंदाज से करूंगा, अपनी समझ के मुताबिक करूंगा। तो आपकी समझ से क्या होता है भाई, अगर आपकी समझ काफी होती तो फिर ये निजाम बनाने की जरूरत ही क्या थी अल्लाह ताला को, ठीक है। तो ये सराहतन नाम लेकर के मैं किसी का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करें कि बात को समझ जाएं कि किन कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि हम में से अक्सर जो है ना वो इस तरह की बातें कर जाते हैं, ठीक है। और चूंकि साजिश के साथ जो है वो लोगों की बात होती रहती है, तो इस वजह से जब ये बातें सुनते हैं ना तो फिर फिक्र होती है कि भाई ये तो बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं, मेजर मिस्टेक्स हैं। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर भी आपके सामने बात करी थी कि हम इस्लाह के लिए जब जाते हैं तो वहां पर जाकर के ना हमें यानी अपने आप को वली प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कि अपने आप को जो है वो कामिल प्रेजेंट करें, वली प्रेजेंट करें, मैं तो जी ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, और मैं तो इतना अच्छा काम करती हूँ, मैं तो उतना अच्छा काम करती हूँ, ये लफाजी से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हकीकत को बयान करना चाहिए ताकि हमारी इसलाह हो सके, तो लफाजी जो है उससे जो है वो हमारी इसलाह के रास्ते में खाली रुकावट ही पैदा हो जाती है, क्योंकि फिर शेख भी सोच रहे होते हैं कि भाई ये पहले से ही विलायत के दर्जे के ऊपर फाइज हैं, तो अब मैं क्या इनकी इसलाह करूं, क्या इनकी गलतियों को इनके सामने रखूं, ये तो गलतियों को सुनकर के जो इन्होंने तो उखड़ जाना है, इन्होंने तो जो है वो उल्टा दुश्मन हो जाना है, और आइंदा जो है पलट करके ही वापस नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ना ये कॉन्सेप्ट को फिर क्लास के अंदर समझाया जाता है ताकि हर कोई जो है वो खुद से कोशिश करे कि मैंने कौन सी वाली गलती करी थी, क्या मैंने ऐसी बातें करी थी कि जिनके अंदर मुझे इसलाह करने की जरूरत है, ठीक है। कोई सवाल है किसी को, आपसे 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, लेकिन अगर सवाल होगा तो हम मजीद आपको टाइम देंगे, हमारे यहाँ तो वैसे भी इस वक्त सुबह के टाइम हो रहा है, 8 बजने वाले सुबह के जी। कोई सवाल है ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, नीयत के बारे में, कुफर के बारे में, वो बात समझ में आई? मैंने अभी आपको अपना जाती तजुर्बा बयान किया चंद घंटे पहले का, कि वो जो साहब जो है वो अकीदे के मामले में कहते हैं नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। वो बात समझ में आई थी, ये नो वन इज परफेक्ट वाला जो जुमला है ये अकीदे पर अप्लाई नहीं होता, अकीदा हैज टू बी परफेक्ट, अकीदे के अंदर थोड़ा सा भी झोल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट वाला जुमला अमल पर अप्लाई होता है, एंड दैट इज ट्रू, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम क्या परफेक्ट होंगे, जो परफेक्ट परफेक्शन के करीब पहुंचे वो भी परफेक्ट नहीं थे, ठीक है। तो हमारी क्या हैसियत, हम तो हैं ही इम्परफेक्ट सारे के सारे, ठीक है, लेकिन ये इम्परफेक्शन ये एक्सेप्टेबल है अल्लाह ताला के नजदीक, अगर हम अपने गुनाहों पर का इकरार कर लें, ठीक है ना, इकरार कर लें, अल्लाह ताला हमारा बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देंगे, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है ये बात, ठीक है। तो बस हमारा काम करने का ये, परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा कि आप अमल के हिसाब से परफेक्ट बन जाए, ठीक है ना, अलबत्ता अपनी इम्परफेक्शन के ऊपर इकरार कर लें और अल्लाह ताला से माफिया मांग लें बस, ठीक है। बस अपनी इम्परफेक्शन को जो है वो परफेक्शन करार देना, ये मसला बन जाता है, ठीक है। और उस अपनी गलतियों के ऊपर इसरार करना कि आगे से कोई बंदा आपको समझा रहा है, उलमा आपको कोई बात बता रहे हैं, नहीं, मैं तो मेरी तो नीयत बड़ी अच्छी है भाई, मैं तो बड़े अच्छे काम करती हूँ जी, मैं तो ये गलती कर ही नहीं रही हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हूँ, ठीक है, ये ले डूबता है हमें, ठीक है। इसी को सहाबा कराम के दरमियान एक जुमला बड़ा मकबूल था, हमारे हजरत अपने बयान में फरमाते हैं कि उनके यहाँ ये जुमला बड़ा इस्तेमाल किया जाता था कि इकरार के साथ कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता, इकरार के साथ कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता, یعنی کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو بندہ اقرار کر لے, اقرار کرنے کا مطلب معافی مانگ لے, ندامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح کوئی گناہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں رہتا, ٹھیک ہے, اصرار کے ساتھ کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا. کتنا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر رہے ہوں لیکن اگر اس کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دیں گے, اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, یا دوام کے ساتھ اس کو کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور سمجھانے والے کی بات کو رد کرنا شروع کر دیں گے, تو وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ بن جائے گا, وہ صغیرہ نہیں رہے گا بلکہ وہ کبیرہ بن جائے گا. جیسے کہ ہم کو کوئی بات سمجھاتا ہے اور ہم آگے سے حجتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, جسٹیفیکیشن بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے جو ہے نا اگر وہ چھوٹا بھی گناہ تھا نا وہ اس اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن جاتا ہے. عقیدے میں بہت ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو عوام کے علم میں نہیں ہوتی ہیں. جی بالکل, عقیدے میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں, عوام کے علم میں نہیں ہوتی, اسی وجہ سے عوام کبھی بھی عقیدے کو کمپلیٹلی طور پر نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ یاد رکھ سکتے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے عوام کے لیے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا حل ہے, جب آپ نہ سمجھ سکتے ہیں عقیدے کی تفصیلات کو نہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو اب کیسے عقیدے کی حفاظت کریں؟ آپ میں سے کوئی جواب دے اس بات کا. عوام الناس نہ عقیدے کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو کیسے اس کی حفاظت کریں؟ جی اسی لیے علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ہر بات آپ پوچھ بھی نہیں سکتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط عقیدہ ہے, آپ کیا جا کے پوچھیں گے, رائٹ, پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ جو اگلا بندہ بات کہہ رہا ہے یہ عقیدے کے حساب سے صحیح ہے کہ غلط ہے. عوام الناس کو تو پہچان بھی نہیں ہوتی نا, ٹھیک ہے, عوام کہلاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کو تو پہچان بھی نہیں ہو پاتی کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو دوسرا جواب ہے یہ زیادہ صحیح جواب ہے, علماء سے جڑ کر کے رہنا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, ٹھیک ہے, جڑ کر کے رہنا, نقی ہو کر کے رہنا, ٹھیک ہے, کہ کہیں کسی جگہ سے اگر کوئی غلط بات سن بھی لی نا, روزانہ کے حساب سے, مستقل کے حساب سے, کم از کم ہفتے میں ایک بار کے حساب سے علماء کے پاس آنا, علماء سے جڑنا, علماء کے ساتھ مستقل کی ایک کمیونیکیشن رہنا, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں نہ بھی پتا ہو نا کہ کوئی بات کسی نے غلط کہی ہے تو علماء کی باتیں سن کر کے اور علماء سے کے ساتھ بیٹھ کر کے ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا رہے, ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی غلط بات جڑ نہ پکڑنے پائے, جڑ نہ پکڑنے پائے, ٹھیک ہے. تو علماء کی صحبت سے جو ہے نا یہ فائدہ ہوتا ہے, جڑ نہیں پکڑنے پاتی, اگرچہ کہ غلط باتیں جو ہیں وہ سننے کو مل سکتی ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ صحیح ہے کیسے معلوم ہوگا؟ علماء سے جڑ کر کے معلوم ہوگا, جڑی رہیں اور جیسے وہ باتیں سمجھاتے ہیں اس انہی باتوں کے اوپر عمل کرتی رہیں, ٹھیک ہے. آپ سے جو ہے وہ قیامت کے دن نا یہ عقیدے کے سوالات نہیں ہوں گے کہ بھئی یہ آپ اس بات پہ بلیو کرتی تھیں کہ نہیں کرتی تھیں, آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال تھا کہ نہیں خیال تھا, یہ خیال تھا کہ وہ خیال تھا, یہ ساری تفصیلات آپ سے نہ قبر کے اندر پوچھی جائیں گی نہ قیامت کے دن پوچھی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا آپ کو یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو علماء سے جڑ کر کے رہیں اور علماء کی جو اطاعت گزاری ہے نا اس کیفیت کو بنا کے رہیں, یو ول بی فائن, ٹھیک ہے نا. قبر میں بھی سوال جواب کا معاملہ اللہ آسان فرما دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور حشر میں بھی سوال جواب کا معاملہ آسان فرما دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہماری یعنی عوام الناس کی ذمہ داری تفصیلات کو جاننا نہیں ہوتا, عوام الناس کی ذمہ داری جڑ کر کے رہنا ہوتا ہے, جڑ کر کے رہنا, ٹھیک ہے. تو جو ذمہ داری ہے نا اس کی فکر کرنی چاہیے, جو نئی ذمہ داری ہے اس کی فکر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ چلیں کلاس ختم کرتے ہیں, کافی ایکسٹرا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.